ओम शांति। आप सभी गीत सुन रहे थे बाबा ही मेरा संसार है। तो कैसे हम अपने संसार को बाबा का बना दें और बाबा ही हमारा संसार है, इस विषय पर आदरणीय शिलू दीदी जी हम सबको बहुत शिक्षाओं से, बाबा की शिक्षाओं से भरपूर करेंगी, जिनका हम बहुत कर्तव्यनी के साथ स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। आदरणीय शिलू दीदी जी के लिए मैं दो शब्द कहूंगी। करिश्मा है कि दृष्टि में, मुख में गंगा की धार बहती है। महिमा है कि वृत्ति में अमृत की धार बहती है। यूं तो आसमा और धरा की अलग कहानी है। वंदनी है कि कृति में आपके स्नेह की भरमार रहती है, स्नेह की भरमार रहती है। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आदरणीय शिलू दीदी जी, आपका जन्म 1948 में मुंबई में हुआ। दीदी ने बचपन से ही आध्यात्मिक अनुभव के प्रति गहरी रुचि रखी, इसलिए 1960 में 12 वर्ष की अल्प आयु में आप इस विश्वविद्यालय के संपर्क में आई। आप मुंबई विश्वविद्यालय से 1969 में विज्ञान में स्नातक होने के बाद 21 वर्ष की आयु में मानवता की सेवा में संपूर्ण रूप से समर्पित हो गईं। आप वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षिका तथा संचालिका राजयोग शिविर माउंट आबू की हैं, एजुकेशन विंग की मधुबन कोऑर्डिनेटर हैं। आप हिंदी, अंग्रेजी तथा सिंधी भाषा में धारा प्रवाह बोलती भी हैं तथा इन भाषाओं में कुशल वक्ता के साथ साथ आप कुशल सफल अनुवादक भी हैं। आपने पांचों महाद्वीपों में 70 से भी अधिक देशों में यात्राएं की। आपके प्रवचन जीटीवी, सोनी, आस्था तथा संस्कार चैनलों पर प्रसारित होते रहते हैं। आप किसी भी आध्यात्मिक विषय पर अपने अनुभव रस से अधिकार एवं प्रभावी रूप से बोल सकते हैं। आदरणीय शिलू दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ही मेरा संसार है। जो भाई बहने सचमुच दिल से ये स्वीकार करते हैं कि बाबा ही मेरा संसार है, वो हाथ उठाए। अच्छा, जो समझते हैं नहीं नहीं और भी कोई है जो मेरा संसार है, वो हाथ उठाएं। है एक दो हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, और भी कोई है तो जिन्होंने हाथ उठाया कि बाबा ही मेरा संसार है, अवश्य सोच समझ कर उठाया होगा। और जिन्होंने सोचा कि नहीं अब और भी कोई संसार है मेरा, उन्होंने भी सोच समझ कर हाथ उठाया होगा। लेकिन अगर हाथ उठाया है कि और भी कोई है बाबा के सिवाय, तो अवश्य अपने विचारधारा को बदलेंगे, क्योंकि तब ही बाबा से संपूर्ण प्राप्ति कर सकेंगे। आज भी बाबा ने मुरली में बहुत सुंदर रूप से कहा कि हमने भक्ति मार्ग में भगवान से कहा कि आप आएंगे तो हम आप पर बलिहार जाएंगे, हम आपकी शरण में आएंगे, तो बाबा के शरण में जाना, बाबा पर बलिहार होना, यही है बाबा को अपना संसार मानना। जब हम कहते हैं संसार है बाबा, तो कई बातें मन में आती है कि जो संसार से न्यारा है पर सारे संसार का प्यारा है और सभी का सहारा है, उसको हमने अपना संसार माना है। तो कैसे पता चले कि हमने उसको अपना संसार माना है, और अगर नहीं माना है अब तक तो कैसे उसे अपना संसार माने? क्योंकि संसार में जो कुछ भी है उसको हम तीन बातों में डिवाइड कर सकते हैं। संसार में जो कुछ भी है, एक है व्यक्ति जो संसार में है, दूसरा है वस्तु जो संसार की चीज है, और तीसरा है वैभव जो संसार के ही है। तो व्यक्ति, वस्तु और वैभव, इन तीनों को ही हम संसार कहते हैं। कई बार घर में बहुत सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है, सफाई वफाई कुछ नहीं हुई है, इधर उधर कई चीजें पड़ी है, तो कहा जाता है अरे क्या संसार खोल के बैठे हो, पूरा संसार जैसे खोल के बैठे हो, इधर उधर चीजें पड़ी है। तो व्यक्ति, वस्तु और वैभव, ये तीन बातें संसार में आती है। व्यक्ति अर्थात संबंध, संबंध भी संसार में जरूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अकेला तो रह नहीं सकता है। कोई सोचे मैं अकेला रहूं बस और कोई मेरे साथ न रहे, थोड़ा समय तो चलो रह पाएगा लेकिन उसका लेना देना तो व्यक्तियों से ही है। अकेला रहकर भी कैसे रहेगा, खाना है, पीना है, रहना है, इधर ये चाहिए वो चाहिए, तो लोगों से ही संपर्क रखना पड़ेगा, कुछ लेना है कुछ देना है। तो इसीलिए संसार में कोई अकेला रह भी नहीं सकता, पागल हो जाएगा, वैसे ही पागल हो जाएगा। किसी से बातचीत करेगा अगर कोई होगा ही नहीं तो किससे बातचीत करेगा, दीवारों से क्या बातचीत करेगा? कई लोग दीवारों से बातचीत करते, कोई है ही नहीं तो दीवारों से ही बातचीत करते, रास्ते पर ऐसे ही बातचीत करते, बातें करते रहते हैं, कोई है भी नहीं तो कहेंगे शायद बेचारा पागल हो गया है, बातें ही करता रहता है पता नहीं किससे। तो इसीलिए कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं रह सकता है। अंदर में कुछ भी दिल के उद्गार हैं, कुछ भी दिल में भरी हुई बातें हैं, मन में है, वो भी किसी के आगे तो निकालेगा। तो इसीलिए व्यक्ति ये संसार की एक चीज है और मनुष्य उसके बिना नहीं रह सकता। वैसे ही वस्तु भी है, वस्तु माना शरीर के लिए हमें बहुत कुछ चाहिए, खाना है, पीना है, ये पांच तत्व, हवा है, पानी है, जीवन जीने के लिए ये सब साधन तो चाहिए, भोजन भी पकाना है, सब कुछ चाहिए शरीर को चलाना है तो वस्तु भी चाहिए, रहना है, पहनना है, चलना है, फिरना है, क्या नहीं शरीर को चाहिए, सुबह से लेकर के रात्रि तक जीवन की बहुत आवश्यकताएं हैं जो हर पल हमें चाहिए। हम कभी कहीं बाहर जाते हैं और घर की कोई ऐसी कोई जरूरी चीज भूल गए तो उसका अभाव कितना महसूस होता है कि अरे ये तो मैं भूल ही गया, घर में था भूल गया लाना। फिर नहीं है तो ढूंढेंगे किसी दुकान पर कहीं से मिल जाए कोई जो काम की चीज है हमको अपने लिए चाहिए। तो वस्तु भी जीवन की आवश्यकता है और वैभव भी चाहिए, धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। इसीलिए कई बार बाबा कहते ना चाहिए चाहिए चाहिए, ये तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो परंतु संसार में रह रहे हैं तो ये सब चाहिए जरूर, नहीं हम कोई संसार छोड़कर कहीं जंगल में जा रहे हैं, सन्यासी तो है नहीं। अगर सन्यासी हैं तो भी बेहद के सन्यासी हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए सब कुछ मन से त्याग करते हैं। परंतु ये सब तब हो सकेगा जब बाबा को अपना संसार बनाएंगे। अगर दो पांव में नाव होगी तो बाबा कहते चीर जाएंगे, जैसे दो पैर में दो नाव में पैर हो और दोनों नाव अलग अलग दिशा में जाए तो क्या होगा उस व्यक्ति की हालत। इसीलिए दो पैर है परंतु दोनों पैर एक ही नाव में हो तो उस नाव से वो पार हो जाएगा, पर दो पैर है और दो नाव में पैर रखे और दोनों की दिशा अलग अलग हो तो वो तो बीच में ही बीच भंवर में ही डूब जाएगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि बाबा को ही अपना संसार बनाओ। व्यक्ति वस्तु वैभव जो संसार की चीजें हैं वो बाबा को बनाओ। अब वो कैसे बनाएंगे या बनाते हैं वो हर एक अपने आप से पूछे। जिसकी युक्तियां बाबा ने तो बहुत हमें बताई है, बाबा हमें हर वक्त कहते हैं कि मुझे अपना साथी बनाओ। साथी बनाना माना उनको ही अपना सर्व संबंधी मानना, क्योंकि दुनिया में बहुत संबंध है। एक कुमारी है तो उसके भी तो संबंध है और शादी करके ससुराल जाती है तो डबल घर हो जाता है, डबल परिवार, मायके का भी परिवार तो ससुराल का भी परिवार, तो डबल संबंधी हो जाते हैं, बहुत विस्तार हो जाता है। फिर सबके साथ तोड़ निभाना भी होता है क्योंकि लेन देन तो है ना संसार में, एक हाथ से लेना है तो दूसरे हाथ से देना है, एक हाथ से देना है तो दूसरे हाथ से लेना है। पर वो कोई इस बाबा को संसार बनाने का मतलब ये नहीं है कि ये सब लेन देन खत्म कर देना है, क्योंकि 63 जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब भी है और उन 63 जन्मों के कर्मों के हिसाब किताब को इस एक जन्म में पूरा करना है। यहां से कोई हिसाब किताब लेकर नहीं जाना है, इसलिए बाबा कहते हैं छोड़ना भी कुछ नहीं है। सन्यासी तो घर बार छोड़ के चले जाते हैं, अपने जिम्मेदारियों को छोड़ के चले जाते हैं, हमें वो नहीं करना है। जिम्मेदारियां भी पूरी निभानी है, तोड़ भी निभाना है, छोड़ना भी नहीं है, पर एक बात भी जरूर ध्यान पर रखनी है, वो क्या कि नया कुछ जोड़ना भी नहीं है। क्योंकि अगर नया कुछ जोड़ लिया तो पहले तो टूटा ही नहीं है, और नया जोड़ लिया तो फिर वो कब छूटेगा, वो कब पूरा होगा। इसलिए नया कुछ नहीं जोड़ना है, छोड़ना भी कुछ नहीं है, और फंसना भी कहीं नहीं है। बाबा कहते हैं बस एक फांस अपने गले में अगर लगानी है तो वो बाबा की याद की लगानी है बस, और कहीं भी फंसना नहीं है। फांस लगाते हैं ना गले में, जब किसी को ये फांसी देते हैं तो वो फांस होती है जो गले में डालते हैं, और वो फांसी पर लटक जाता है सारे सहारे उसका, जो जिस सहारे पर वो खड़ा है वो सहारा निकाल दिया जाता है और वो फांसी पर लटकता रहता है, खत्म हो गया। तो गले में पहले फांस डाली जाती है, फिर जिस पर खड़ा है वो सहारा निकाल दिया जाता है, तब वो फांसी पर लटकता है। तो बाबा भी क्या कहते हैं कि तुम्हें उस फांस को, याद की फांस को गले में डालना है, हर वक्त बाबा को साथ रखना, यही है बाबा को संसार बनाना। हमेशा ये सोचो कि सच्चा सहारा मेरा केवल एक बाबा है, तब बाबा को संसार बनाएंगे। आज दुनिया में हम देखते हैं कि अनेकों को सहारा बना के बैठे हैं। चलो एक सहारा छूट गया मान लो तो दूसरे को पकड़ेंगे, अगर दूसरा भी छूट गया तो तीसरे को पकड़ेंगे। परंतु जब देखते हैं अन्य सब सहारे सब खत्म हो गए, कोई सहारा नहीं है, तब कहेंगे हे भगवान आप ही हमारे सहारे हो। तो भगवान को अपना सहारा कब मानते हैं, जब सब और सहारे टूट गए तब हे भगवान, है ना। इसीलिए जब किसको फांसी पर चढ़ाया जाता है तभी भी कहेंगे तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा है वो पूरी कर लो। तो कोई धार्मिक विचार के होते हैं तो कहेंगे बस मुझे गीता दे दो, मुझे कुरान दे दो, मुझे बाइबल दे दो, ताकि मैं कम से कम वो थोड़ा पढ़ लूं। तो क्योंकि अभी तो भगवान ही सहारा है, बाकी तो और कोई सहारे है ही नहीं। परंतु वो सहारा भगवान का अंत में लेते हैं, और बाबा क्या कहते हैं, वो अंतिम सहारा है या वो पहला सहारा है, क्या है, क्या है, अंतिम या पहला? हाँ, पहला, पहला और वही एकमात्र, एक ही और वही पहला और अंतिम। ये नहीं कि सब सहारे जब खत्म हो तब वो सहारा बने, ना ना, बस ये अंतर है। बाबा मेरा सहारा माना वही सच्चा सहारा है। कोई भी ऐसी बात आए कहो बाबा, देखो बाबा दौड़ा दौड़ा आएगा। इसीलिए बाबा कई बार कहते बच्चे मुझे यूज करो, मुझे यूज करो। एक बहन है बहुत अच्छा अपना अनुभव सुनाती है कि कैसे बाबा ही मेरा सहारा है। अब उसने तो अपने ढंग से वो बना लिया है हंसाने के लिए। समझो कोई बात हुई, कोई चीज उसको मिल नहीं रही है, ढूंढ रही है घर में मिल नहीं रही, बाबा वो चीज कहाँ है, वो सचमुच कहती है कि मैं बस बाबा कहती हूँ और एकदम सामने मिल जाती है। कोई भी बात होती, बाबा ये कहाँ है, बाबा बस कहा और सचमुच कहाँ, वो पहले दिखाई नहीं दी पर जैसे ही उसने बाबा कहा वो चीज सामने आ जाती। कहाँ से आ जाती है पता नहीं, वे तो दिखाई नहीं दी, उसी समय कहाँ से आ गई। बड़ा अच्छा अनुभव सुनाती है वो। कोई भी उसको समस्या आ गई, कोई उसका मान लो कई बातें होती है, बस कहेगी बाबा आपको ये काम करना है, बस बाबा आपको ही करना है और कोई नहीं मेरा, और कोई मेरा ये काम नहीं करेगा इसीलिए आपको करना है ऐसे भी नहीं। ये भी हुआ कि भाई दूसरा सहारा नहीं है इसीलिए आप सहारे हो, नहीं बाबा अब आपको ही ये करना है। और सचमुच इतना वो काम सरल हो जाता है उसका, जो वो सोचने में पड़ जाती है कि ऐसे सरल कैसे हो गया, क्योंकि बाबा को ही सहारा माना। पर इसका मतलब ये भी नहीं है, कई उसका उल्टा एडवांटेज ले लेते हैं। क्या एडवांटेज लेते हैं, मैं कुछ न करूं बस बाबा ही सब कुछ करे। लेकिन बाबा ये भी कहते हैं कि जो हिम्मत रखते हैं उनको ही मदद मिलती है, हिम्मत ए मर्दा मदद ए खुदा। पहले अपनी हिम्मत चाहिए, जरूर करूंगा, जरूर हो जाएगा, बाबा मेरे साथ है तो जरूर होगा, जरूर करूंगा, ये अपनी हिम्मत। फिर बाबा मेरे साथ है, ये बाबा की मदद। तो आपकी हिम्मत और बाबा की मदद, ये 100 गुना शक्ति भर देता है, जिसको बाबा कहते हैं आपके 2 हाथ और हजारों हाथ आपको मिल जाएंगे वो कार्य करने के लिए। कई बार भाई बहने इतने त्रस्त हो जाते, इतने थोड़े निराश हो जाते हैं, हाय मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, देखो ये काम वो काम वो काम सब मुझे ही करना पड़ता, कोई मुझे मदद करने वाला नहीं, सब मुझे छोड़ के चले गए। उस समय बाबा याद है, बाबा याद है, क्या कहेंगे माताएं, बाबा याद है उस समय सब छोड़ के चले गए, क्यों भूल गए कि बाबा तो आपके साथ ही है। बाबा नहीं छोड़ेगा, आप छोड़ सकते हो बाबा को, बाबा आपको नहीं छोड़ेगा। इसीलिए ये कहना कि सब छोड़ के चले गए मुझे अकेले को करना है, कभी भी ये संकल्प नहीं आना चाहिए। जिसने बाबा को अपना संसार माना है वो कभी ऐसे नहीं सोचेगा। तो जिन्होंने हाथ उठाया वो सोच समझ कर उठाया ना, कि कब अकेले हो जाते हो तो उस समय लगता है कि अकेली हूँ, अकेला हूँ, कोई नहीं मुझे मदद करने वाला, ऐसे सोचते हो? जो कभी कभी ऐसे सोचते हैं हाथ उठाओ, कोई नहीं हाथ उठा रहा है, थोड़े उठा रहे माताएं, कभी नहीं ऐसे सोचते हो? जरूर सोचते होंगे, निराश हो जाते होंगे, क्या करूं क्या करूं क्या करूं। नहीं, कभी नहीं निराश होना है, क्योंकि दुनिया छोड़ के चली जाएगी, बाबा नहीं छोड़ेंगे आपको, ये निश्चय पक्का हो। जब ये निश्चय पक्का होगा अवश्य आपको सफलता मिलेगी, लेकिन उसके लिए निश्चय पक्का चाहिए और अपनी हिम्मत चाहिए। हिम्मत कभी नहीं हारनी है और निश्चय से डावाडोल नहीं होना है। हिम्मत कभी चलो हार लेते, नहीं हारते हिम्मत रखते, पर निश्चय डावाडोल हो जाता है, बाबा तो मदद करता ही नहीं है, माना क्या हुआ, बाबा तो मदद करता ही नहीं है, माना निश्चय टूट गया ना, बाबा मदद नहीं करता माना ये निश्चय टूट गया। ये क्यों नहीं सोचते हैं कि बाबा उस समय मेरी परीक्षा ले रहा है, मैं परीक्षा में कितना पास होके रहूंगा, बाबा देख रहा है, तो इसीलिए ये परीक्षा है मेरी, मुझे उसमें पास होना है, बाबा मेरे साथ है, तो देखो कैसे उस निश्चय की विजय होती है, जिसको बाबा कहते हैं निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती। और जैसे ही संशय आया, बाबा तो मुझे मदद करता ही नहीं है, सब सहारे चले गए, बाबा भी छोड़ के चला गया, अब ये संशय आत्मक बुद्धि बने, माना सब सहारे खत्म, जीवन का अंत, क्योंकि सहारे खत्म। इसलिए जब बाबा कहते हैं कि ये मत भूलो बाबा ही मेरा संसार है, तो व्यक्ति वस्तु वैभव ये सब बाबा में देखो, ये है बाबा मेरा संसार है। ऐसे नहीं है कि उसके लिए कोई आप मेहनत नहीं करते, मेहनत करते हैं पर निराश नहीं होते हैं, क्योंकि सर्वशक्तिवान मेरे साथ है, कोई साधारण मेरे साथ नहीं है। कई बार किसी का सहारा कोई साधारण होता है तो थोड़ा थोड़ा डर लगता है, पता नहीं ये कहाँ तक मदद करेगा, पता नहीं इसकी मदद मुझे कितने तक मिलेगी। कई बार होता है ना, समझो अचानक पति गुजर गया। अब पति गुजर गया, एक शौक तो आता है बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा, जिसके साथ इतने साल जिए रहे, इतना संसार बनाया। परंतु उसके बाद क्या संकल्प आता है, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा क्या होगा। तो मेरा क्या होगा माना वो बेचारा चला गया, वो तो जहां गया गया, हाँ अभी वापस तो आएगा नहीं, अब मेरा क्या होगा। ये भी अपना स्वार्थ था उसमें ना, तभी तो कहा ना मेरा क्या होगा। लेकिन उस समय उस आत्मा को शांति का दान देना है, बाबा से शक्ति लेकर उसको देना है, ये भूल जाते अभी मेरा क्या होगा। माना बाबा को अपना संसार नहीं बनाया। अब वो जिंदा था तो भी बाबा ही मेरा संसार था, कोई आत्मा ही कहां तक सहारा बनेगी, किसी का कोई सहारा नहीं बन सकती है। इस संसार में जितने भी रिश्ते नाते हैं, संबंध है, ये सब कर्मों के हिसाब किताब है। और जब कर्मों का हिसाब किताब पूरा होता है, कोई भी किसी का नहीं है, ये कड़वा सत्य है। इसीलिए बाबा कहते हैं सब संबंध मेरे से जोड़ो, मैं माँ भी हूँ, बाप पिता भी हूँ, बंधु भी हूँ, सखा भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ, बच्चा भी हूँ। कई बार माताएं आती है, वो कहती है कि हमको 5 बेटियां हो गई पर बेटा नहीं हुआ। अरे बेटा नहीं हुआ तो क्या हुआ, बाबा को बना लो ना बेटा। 5 बेटियां हो गई तो क्या हुआ, अगर बेटा होता तो वो आपको छोड़ के चला जाता, वो बेटा छोड़ेगा नहीं, बाबा बेटा छोड़ेगा नहीं, वो बेटे तो छोड़ के चले जाएंगे। 5 बेटियां हैं तो कोई बात नहीं, बेटियां जितना माँ बाप को पूछेगी, बहू वहू नहीं पूछने वाली है, तो इसीलिए बेटियां और ज्यादा काम की है, बहुएं वहुएं काम की नहीं होगी, क्योंकि वो तो आपके बेटे को लेके चली जाएगी। तो इसीलिए उसका भी दुख करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जिसके साथ आपका संबंध है, जितना हिसाब किताब है उतना ही वो संबंध रहेगा। एक कहानी सुनाते हैं ना, एक कहानी आती है कि एक व्यक्ति था, काफी बुजुर्ग था, उसके 4 बेटे थे और काफी उनके बेटे जो थे बड़े बिजनेसमैन थे, खुद भी बड़ा बिजनेसमैन था, लेकिन करीब 10 साल से वो रिटायर हो गया था, बच्चों को सब देख करके बुजुर्ग था तो रिटायरमेंट ले ली थी। तो उससे किसी ने पूछा, 10 साल से रिटायर था, तो किसी ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, आयु कितनी है उम्र, तो कहा मेरी उम्र तो केवल 10 साल है, मैं तो 10 साल का बच्चा हूँ। अब बूढ़ा 70 साल का 80 साल का होगा और कहा मैं 10 साल का हूँ। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा ये अपनी उम्र क्यों छुपा रहा है। फिर पूछा कि अच्छा आपकी संपत्ति कितनी है, तो कहा होगी कुछ लाख, जबकि करोड़ों की संपत्ति, उनके बच्चों की, सबको बिजनेस दे दिया था, सब कुछ बांट दिया था, तो करोड़ों की संपत्ति थी, लेकिन उसने कहा कुछ लाख, तो कहा ये भी झूठ बोल रहा है, सब झूठ ही बोल रहा है। फिर पूछा कि अच्छा आपके बेटे कितने हैं, तो बोला 1, जबकि 4 बेटे थे। तो उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, कहा कि भाई साहब आप सच बताइए, छिपा रहे हैं आप, सच बताइए आप, ये जो आप कह रहे हैं इसका राज क्या है। तो उसने कहा देखो राज ये है कि ये शरीर भले 80 साल का है लेकिन 70 साल की जैसी आयु हुई मैंने अपना सब को धंधा बच्चों को दे दिया और मैं बिल्कुल फ्री हो गया और वो ही अभी सब संभाल रहे हैं। मैं कभी कभी जाता हूँ देखता हूँ बाकी बहुत अच्छी तरह से संभाल रहे हैं। इसलिए मैं तो समझता हूँ कि ये 10 साल जो मेरे भगवान के भजन में जाते हैं मेरी सच्ची आयु यही है 10 साल। वो 70 साल तो पूरी हो गए वो तो दूसरी आयु थी वो दूसरा जन्म था जैसे। फिर कहा कि अच्छा आपकी संपत्ति तो कहा कि जितनी संपत्ति मैंने अपने हाथों से दान किए ना वही मेरी सच्ची संपत्ति है वही सच्ची संपत्ति है। भले करोड़ों की संपत्ति होगी मुझे तो कुछ पता भी नहीं है इतना क्या क्या बच्चे कितना और बढ़ा रहे हैं लेकिन जितना मैंने अपने हाथों से दान किया है क्योंकि आज अगर मैं शरीर मेरा छूट जाए तो मेरे साथ क्या चलेगा कौन सा ये धन जो बैंकों में है या जो व्यापार में लगा हुआ है वो धन मेरे साथ नहीं चलेगा लेकिन जो मैंने अपने हाथों से दान किया है वही मेरी सच्ची पूंजी होगी जो मुझ जो आत्मा के साथ जाएगी। तो बात तो सही है वही उसकी संपत्ति है बाकी तो भले बैंकों में है कहीं भी है वो वहीं का वहीं रह जाएगा। फिर बोला आपके बेटे आपके तो ज्यादा है तो कहा कि वैसे 4 बेटे हैं लेकिन 3 बेटे अभी धीरे धीरे सब अलग होते जा रहे अलग होते जा रहे मेरे से कोई हिसाब किताब ही नहीं है ना मुझे कुछ बताते हैं। मैं कहती हूँ ठीक है बस एक बेटा है जो मेरे अच्छे संपर्क में है छोटा वाला वो सब हमें बताता रहता है तो मैं तो यही समझता हूँ एक ही बेटा है मेरा क्योंकि बाकी तो 3 से तो कोई लेना देना ही नहीं है। सचमुच एक से ही लेना देना है तो उसके साथ ही हिसाब किताब है ना बाकी तो हिसाब किताब ही नहीं है भले वो बेटे क्यों नहीं है। यानी ये देखिए ये इसको कहेंगे आध्यात्मिकता कि मेरा वास्तव में क्या है। अब ये तो लौकिक दुनिया की कहानी है पर बाबा हम बच्चों को और भी इनसे ऊंचा ले जाते हैं मेरा कुछ भी नहीं है ये भी जो चलो मैंने संपत्ति मैंने दान की वो मेरी है वो भी हम क्यों सोचे। इसके लिए कहा जाता है ना नेकी कर दरिया में डाल जो कुछ आपने किसकी भलाई की वो भलाई की वो सोचो भी नहीं कि मैंने भलाई की। इसीलिए कहा जाता है अगर आपका दायां हाथ दान करता है तो इतना गुप्त होना चाहिए जो बाएं हाथ को भी पता न चले कि दाएं हाथ ने दान किया है। मानो इतने हद तक गुप्त दान महाकल्याण का गायन है क्योंकि गुप्त दान का पुण्य बहुत बनता है और वो गुप्त दान जो पुण्य भी तब बनता है जब पात्र को दान करते हैं तभी वो पुण्य बनता है। नाम मान शान के लिए केवल किया और पात्र भी योग्य नहीं है वो दान पुण्य नहीं बनता है। परंतु जो हम अच्छा कार्य करते हैं उसका वर्णन करने की जरूरत ही नहीं है इसलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल वर्णन क्यों कर तो मैंने ये किया मैंने ये किया मैंने ये किया जरूरत ही नहीं है। इसीलिए गीता में भी आता है ना कर्म योग का सिद्धांत क्या है कर्मणे वाधिका रस्ते मा फलेषु कदाचरम कर्म पर तुम्हारा पूरा अधिकार है फल ईश्वर पर छोड़ दो फल की इच्छा मत रखो आप कर्म को महत्व दो फल अपने आप देगा ईश्वर अब उन पर छोड़ दो। तो बाबा को अपना संसार मानना माना जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका फल बाबा को छोड़ दो सोचो नहीं हाँ बाबा ये मुझे मिलेगा तो मैं ये करूंगा बाबा ये मुझे मिलेगा तो ये करूंगा नहीं बाबा सब जानता है। ये जो कई बार हम लोग कहते मैं इतना करता हूँ मैं इतना करता हूँ किसी कोई मुझे पूछता ही नहीं है कोई को पता ही नहीं है मैं कितना कर सकता हूँ मैं इतनी सेवा करता हूँ ये करता किसी को मालूम नहीं है। अरे मालूम हो या ना हो बाबा को तो पता है फल देने वाला बाबा है या वो व्यक्ति है। तो बाबा मेरा संसार है माना बाबा को ही सब कुछ रूप में देखना हम बाबा के लिए कर रहे कोई व्यक्ति के लिए थोड़ी कर रहे अपने लिए भी नहीं कर रहे हैं। ना इंसान के लिए कर रहे ना अपने लिए, चलो कर रहे अपने लिए तो पता है क्योंकि कर्म का फल तो मिलेगा, तो अपने लिए ही कर रहे हैं, लेकिन बाबा के लिए भी कर रहे हैं। हम पवित्र बन रहे हैं, किस लिए बन रहे हैं? अपने लिए भी बन रहे हैं तो बाबा के लिए भी बन रहे हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं मुझे पवित्र दुनिया बनानी है, सारे संसार को पवित्र बनाना है, स्वर्ग रचना है, देवी देवता धर्म रचने आया हूँ, इसलिए बच्चे तुम बच्चों का मुझे सहयोग चाहिए, सहारा चाहिए पवित्रता में, क्योंकि पवित्रता के आधार से ही सत धर्म की स्थापना होगी। जितने भी धर्म स्थापन हुए सब धर्म पवित्रता के आधार से ही हुए। इसलिए बाबा की मुरली में भी जब भी कोई बात आती है, भाई इतने विघ्न क्यों पड़ते यज्ञ में? पवित्रता के कारण, शुरू से लेकर के पवित्रता के कारण ही विघ्न पड़े हैं और अंत तक पड़ते रहेंगे। जो आज भी बाबा ने मुरली में कहा, कल भी कहा, कितनी बांधेलियां बिचारी बांध हो जाती है क्योंकि कोई ट्रेटर बना, किसी ने कोई ऐसा गलत काम किया, नाम बदनाम किया, तो कई बांधेलियां बंध जाती है, उनको मना करते मत जाओ मत जाओ। मुख्य बात तो पवित्रता की ही है, शुरू से ही ये विघ्न पड़ते आए। ब्रह्मा बाबा के आगे कोई कम विघ्न नहीं पड़े, कितने विघ्न आए पवित्रता के कारण ही, क्योंकि शुरू शुरू में शिव बाबा का जो आदेश मिला उस अनुसार बाबा करते गए। इतनी सब कुमारियां आई, माताएं आई, परिवार के परिवार आए और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा ये सब से प्रतिज्ञा करवाई कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे, प्रतिज्ञा कर ली। छोटे छोटे बच्चों ने भी, जो स्कूल में पढ़ते थे बच्चे, जो जिनका बोर्डिंग स्कूल बाबा ने खोली थी उसमें बच्चे पढ़ते थे, उन्होंने ही प्रतिज्ञा कर ली। तो जब सब ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि शिव बाबा ने करा लिया, ब्रह्मा बाबा ने भी खुद प्रतिज्ञा की उस समय कि हम अपने जीवन को पवित्र और योगी बनाएंगे, तो हंगामा मच गया। बाबा को सब कहने लगे, अरे ये क्या किया तुमने, सबको पवित्रता की प्रतिज्ञा करवा ली, इतने छोटे छोटे बच्चे, ये क्या जाने पवित्रता, अपवित्रता क्या होती है? अभी तो छोटे बच्चे, दुनिया ही कहाँ देखी है, संसार देखा ही नहीं इन्होंने, और ये प्रतिज्ञा करवा ली आपने। चलो आप तो बूढ़े हो गए, 60 बरस के हो गए, आपने तो संसार देख लिया, बाल बच्चे पैदा कर लिए, पोतरे दोतरे सब थे बाबा को, पर इन बच्चों ने तो कुछ भी नहीं देखा है, इनसे आपने प्रतिज्ञा करवा ली। तो बाबा कहते थे ये मैंने नहीं करवाई है, मुझे क्या मालूम था कि पवित्र योगी बनना है, मैं भी तो संसारी था, मैंने भी तो अपना परिवार रचा है, सब मेरे साथ हैं, तो मैंने ये पवित्रता की प्रतिज्ञा नहीं करवाई है, मुझे भी उस परमात्मा ने करवाई, और जब उसने करवाई मैंने भी इनके साथ की है, मैंने थोड़ी करवाई है। तो लोगों को क्या समझ थी, उन्होंने सोचा इसी ने करवाई है, क्योंकि निराकार को तो देख ही नहीं सकते, लेकिन बाबा तो साक्षात्कार करते थे ना, शिव बाबा की कैसे प्रवेशता हुई, बाबा ने कैसे अनुभव किया इसको, कैसे शिव बाबा की मुरली उनके द्वारा चल रही है, बाबा को कुछ समझ में नहीं आता था, ये कौन इस मुख से बोल रहा है, मैं तो नहीं बोल रहा हूं, ये कई ट्रांस मैसेंजर्स थे, जो संदेशियां थी वो वतन में अनुभव करती थी कि कैसे शिव बाबा की इनमें प्रवेशता हुई और शिव बाबा इनके द्वारा बोल रहे हैं, और बाबा को बताते थे, बाबा का संपूर्ण रूप देखते थे और बाबा को बताते थे, बाबा आपका संपूर्ण रूप वतन में देखा। तब बाबा को महसूस हुआ कि मुझे अब मेरा संपूर्ण वतन रूप है, वतन में मुझे वो बनना है, तब पुरुषार्थ इतना उनका रफ्तार पकड़ा। गुलजार दादी ने सबसे पहले ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त रूप देखा सूक्ष्म वतन में, संपूर्ण रूप, और उस संपूर्ण रूप ने कहा कि ये साकार में ब्रह्मा, फिर सो संपूर्ण ब्रह्मा बनना है, संपूर्ण बनकर। तो बाबा को आकर के गुलजार दादी ने ये राज बताया, क्योंकि शुरू से गुलजार दादी साक्षात्कार करती थी शुरू से, पहले दिन से। जैसे ही बाबा के सामने आई, बाबा को देखा, ध्यान में चली गई और श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया। तो इसीलिए बाबा के ऊपर कितने सारे विघ्न आए, लेकिन शिव बाबा कहते थे थोड़ा तो सहन करो, सहन करो, क्योंकि धर्म स्थापना का ये कार्य भगवान ने तुम्हारे द्वारा शुरू किया है। फिर शिव बाबा ने उनको कहा कि अपना सब कुछ, चल अचल प्रॉपर्टी जितनी भी है, सब माताओं कन्याओं के आगे सुपुर्द कर दो, विल कर दो। और बाबा ने ये नहीं सोचा मेरे बच्चों का क्या होगा, उनका मेरा भविष्य क्या होगा, क्या होगा, बिल्कुल नहीं सोचा। भगवान का आदेश मिला और सारी जो कुछ उनकी पत्नी, इतने बड़े ज्वेलर थे, इतना बड़ा व्यापार था राजाओं महाराजाओं के साथ, अंग्रेजों के साथ, उस समय अंग्रेज भी थे और महाराजाएं भी थे भारत में, उनके साथ बाबा का व्यवहार चलता था, व्यापार चलता था, क्योंकि हीरों के खरीदार वही ज्यादा होते थे, अंग्रेज लोग और राजा महाराजा लोग। तो वो जो इतना बड़ा व्यापार, इतना कुछ नाम उनका बाबा का था राजाओं के बीच में, अंग्रेजों के बीच में भी, क्योंकि बहुत ज्वेलरी तो वो लोग ही पहनते थे, भारत से बहुत लेके जाते थे, और एक धक से सब स्वाहा कर लिया और शिव बाबा को अपना संसार मान लिया। आगे पीछे कुछ नहीं सोचा। तो बाबा ही मेरा संसार है ये ब्रह्मा बाबा ने सबसे पहले माना। ब्रह्मा बाबा के आगे तो कोई भी नहीं था। चलो हम अभी कहेंगे दादियां हमारे आगे हैं, बड़ी बहनें हमारी आगे हैं, हाँ बाबा हमारे आगे हैं, ब्रह्मा बाबा, ब्रह्मा बाबा के आगे कौन था? कोई भी नहीं था, सबसे पहला था। और उसने एक बीज बोया, जिस एक बीज के परिणाम स्वरूप आज ये वट वृक्ष की तरह इतना बड़ा ईश्वरीय विश्वविद्यालय खड़ा है, उस एक के कारण। लेकिन कितने निर्माण हैं ब्रह्मा बाबा। हर बार आप साकार मूल्यों में देखेंगे, बच्चे मैं तो कुछ नहीं करता हूँ, बच्चे मैं तो तुम्हारा मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट हूँ, झुक करके बाबा कई बार हाथ जोड़ के ऐसे बच्चों के आगे खड़े होते थे। इतने बाबा निर्माण नम्र हो जाते थे, बच्चों को सदा आगे रखते थे, हर बात में बच्चों को आगे रखते थे। अभी भी हम अव्यक्त बाप दादा से बहुत सुंदर उदाहरण लेते हैं, कई बातें बाबा को आकर के सुनाते, बाबा ये करेंगे ये करेंगे अव्यक्त बाप दादा के सामने, तो बाबा हमेशा यही उनको कहते, आपस में मिल करके राय करो, ये नहीं कि ऑर्डर बाबा दे देंगे, हाँ ये करना ये नहीं करना है, नहीं, मिल करके राय करो। कोई कई बातें, बाबा हम ये करेंगे बच्चे, मिल करके राय करो। तो ब्रह्मा बाबा के आगे भी जब भी कोई ऐसी बात कोई कहते थे, बाबा कहते थे आपस में मीटिंग करो, आपस में जो राय हो वो पहले निकालो, फिर बाबा को आके बताओ। कई भाई बहने कहते हैं कि ये तो हमको बाबा की टचिंग आई, बाबा की टचिंग आई, उस टचिंग के अनुसार ये मुझे करना है, ये मुझे करना है। तो कई प्रश्न करते हैं, ये बाबा की टचिंग है या ये मनमत है? कई बार अपनी मनमत होती है और हम समझते हैं ये बाबा की टचिंग है। तो उसके लिए भी फर्क ये है कि अगर वो बाबा की टचिंग होगी ना, तो अनेकों को आएगी, खाली आपको ही थोड़ी आएगी। अगर वो बाबा की टचिंग है, बाबा की प्रेरणा है, तो केवल आपको ही नहीं आएगी, अनेकों को आएगी, क्योंकि वो टचिंग तो बाबा सबको देंगे ना, केवल आपको ही थोड़ी देंगे। और अगर उसमें कोई विघ्न पड़ रहा है, दूसरे उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, है ना, ये आपकी मनमत है, ये बाबा की टचिंग नहीं है, ये समझ लेना चाहिए। अगर आपके अंदर में डर है, ये है, मानो ये बाबा की टचिंग नहीं है, क्योंकि डर भी होता है, पता नहीं लोग मानेंगे या नहीं मानेंगे, बाबा की टचिंग होगी तो उनको भी आएगी और रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि ये भगवान की शक्ति से काम हो रहा है। इसीलिए बाबा पहले कहते, पहले आपस में राय करो, एक हो जाओ, संगठन हो जाओ, एक मत हो जाओ। और जब एक मत हो जाते हैं तब बाबा उस बात को पास करते हैं। एक इतने तो बाबा भी तो कह सकते हैं, बच्चे ऐसे करो, पर कभी बाबा ने अपने को नहीं आगे किया, बच्चों को आगे किया। हमारी दादियां भी ऐसी थी, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन इस विश्वविद्यालय का ऐसे ही चलता है। दादी ने कभी नहीं कोई ऐसा डायरेक्शन दिया, मुझे मैं कह रही हूं ना सबको करना है, नहीं नहीं आपस से मिलो, मीटिंग करो, सब राय निकालो, ये सब करेंगे। और फिर उसके बाद दादी जी निर्णय देती थी, फिर वो बाबा के पास ले जाते थे। तो ये परिवार की शक्ति है, लेकिन इस परिवार की शक्ति में परमात्मा स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान इसका आधार है। दुनिया में तो हम देखते हैं आपस में लड़ते रहते हैं, वो अपनी मत चलाएगा, वो अपनी मत चलाएगा, हर एक अपनी अपनी मत चलाता रहता है तो सब बिखर जाते हैं, फूट पड़ जाती है, संस्थाओं में फूट पड़ जाती है, सब अपनी अपनी चलाते रहते हैं। कई बार संस्थाओं में जो कारण होते हैं फूट पड़ने के, या शाखाएं अलग अलग बन जाती है और वो सब कुछ अलग हो जाता है, मुख्य रूप से देखा गया है तीन कारणों से। तीन कारण होते हैं जो उनकी शक्ति एकदम नष्ट हो जाती है धीरे धीरे। पहला कारण मुख्य होता है गद्दी पर झगड़ा। एक गुरु चला गया तो गद्दी पर झगड़ा होता है, ये बैठे या वो बैठे। दूसरा कारण होता है पैसे पर झगड़ा। और तीसरा कारण होता है कोई उनकी धारणा, निजी धारणा पर कुछ न कुछ विवाद, क्योंकि उसकी धारणा नहीं है, उसको गुरु बना दिया तो विवाद हो जाता है, कहीं नहीं मानेंगे। तो इसे यहां तो तीनों ही बातें नहीं है, क्योंकि पहले तो गुरु की गद्दी नहीं है, है कोई गुरु की गद्दी। टीचर भी एक ही है, हम सब यही कहते हैं टीचर भी एक ही है, वही मुरली है जो सब सेंटरों पर चलती है। ये नहीं कि कोई अपनी अपनी मुरली कोई चलाते नहीं, वही बाबा की मुरली सब सेंटरों पर एक ही साथ चलती है। सब टीचर एक ही है, पढ़ाई एक ही है, पढ़ाने वाला भी एक ही है, लक्ष्य भी एक ही है। तो जब वो सब एक है तो एक ही हमारा संसार है। लेकिन हाँ, लेन देन क्यों नहीं है, पर बीच में बाबा को रखना बहुत जरूरी है। समझो मैं आपसे कुछ लेती हूं, अब अगर मैं ये सोचती हूं आप मुझे दे रहे हैं तो आपके साथ हिसाब किताब बन जाएगा, पर आप कहेंगे नहीं मैं बाबा को देती हूं, फिर बाबा से मैं लेती हूं, तो बाबा को बीच में डाला, न्यूट्रलाइज हो गया, आपका मेरा हिसाब किताब नहीं बनेगा। ये भी एक बहुत बड़ी कर्म फिलॉसफी है। आप बाबा को दे रहे हैं, हम बाबा से ले रहे हैं, आपसे नहीं ले रहे हैं। तो बाबा को बीच में डाला, उसका माइनस प्लस सब जीरो हो गया, सब न्यूट्रलाइज हो गया। अगर हम वो यूज करेंगे तो आपको देख करके याद करके यूज नहीं करेंगे, इसने दिया नहीं, आपने तो बाबा को दिया, हमने बाबा से लिया, तो अगर यूज करेंगे तो कौन याद आएगा, आप याद आएंगे या बाबा याद आएगा, हाँ कौन याद आएगा, बाबा याद आएगा। ये है बाबा को अपना संसार बनाना। वो वस्तु भी किसकी, बाबा की, मेरी नहीं है। जहां मेरापन आया वहां लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता है, तेरा मेरा, तू तू मैं, हिंदी में लड़ाई झगड़े को क्या कहते, तू तू मैं। कि तू तू मैं का मतलब क्या होता है, ये तेरा ये मेरा, ये मैं ये तू। लेकिन जैसे ही बीच में बाबा को लाया, वो जैसे मैग्नेट बन जाता है, जैसे एक चुंबक होता है ना, तो सुइयां चाहे कितनी भी बिखरी हुई क्यों ना पड़ी हो, चारों ओर सुइयां पड़ी है, तो एक एक सुई को नहीं उठाएंगे, तो क्या करेंगे, एक चुंबक ले लेंगे। वो चुंबक क्या करेगा, चारों ओर घूम, समझो उसको घुमाएंगे, वो सुइयों को पकड़ लेगा, पकड़ लेगा। एक सुई पकड़ में आ गई चुंबक के, वो सुई भी टेम्पररी चुंबक बन जाती है, और वो दूसरे सुई को पकड़ेगी, वो दूसरी तीसरे को पकड़ेगी, चौथी तीसरी चौथे को पकड़ेगी, और सारी सुइयां इकट्ठी हो जाएगी एक चुंबक के कारण। पर जैसे चुंबक हटा तो क्या होगा, सारी सुइयां वहीं पूरी। तो इसलिए एक शिव बाबा को ही संसार बनाते हैं, तब हम सब मिलकर एक हो सकते हैं। सब यही कहेंगे बाबा ही मेरा संसार है। दुनिया में कहते हैं सबको प्यार करो, एक एक को प्यार करो। हम कहते हैं एक को प्यार करो तो ऑटोमेटिकली सबको प्यार मिल जाएगा, क्योंकि ये बड़ा अंतर है। एक एक को प्यार करते जाएंगे तो कहां तक प्यार हमारा पहुंचता जाएगा। इसकी बजाय एक को प्यार करो, तो एक को प्यार किया, उस एक का को प्यार हमने किया या उसका प्यार हमने पाया, वो प्यार सबको मिल जाएगा। जैसे पेड़ को पानी देना है तो पत्ते पत्ते को थोड़ी पानी दिया जाता है, किसको दिया जाता है? हा? बीज को दिया जाता है। बीज को पानी दिया तो सारे पेड़ को मिल जाता है, अलग अलग एक एक पत्ते को देने की जरूरत नहीं है। तो भगवान से क्योंकि हमारा प्यार है तो सारी दुनिया से प्यार है। हम ये नहीं कहेंगे कि हमको सारी दुनिया से प्यार है सिवाय मेरे पड़ोसी के। दुनिया में कई ऐसे कहते हैं सारी दुनिया से मुझे प्यार है, लेकिन पड़ोसी से नहीं है, क्योंकि पड़ोसी से ईर्ष्या होती है। पड़ोसी से क्यों ईर्ष्या हो, वो भी तो भगवान का है। जैसे मैं भगवान का, वो भी भगवान का है। तो भगवान को, शिव बाबा को संसार मानना माना जो कुछ भी बाबा के गुण है वो सब में समान रूप में देखना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बाबा को संसार मानना, ये नहीं बाबा से प्यार है बाकी से नफरत है, नहीं, सारे संसार से प्यार है। कोई ऐसा नहीं जिससे हमको प्यार न हो। प्रकृति से भी उतना ही प्यार है, बाबा की हर चीज से प्यार है, उनकी सारी रचना से प्यार है, क्योंकि रचयिता से प्यार है। तो रचयिता से संबंध है तो उनकी सारी रचना से संबंध है। मेरा हद का एक परिवार छोटा सा नहीं रह जाता है। चलो हद के परिवार में दो बच्चे चार बच्चे होंगे, अब हम क्या कहते हैं, सारा विश्व ही हमारा परिवार है, क्योंकि सारे विश्व का पिता मेरा पिता है। तो बाबा को संसार बनाना माना सारे विश्व को अपना परिवार समझना, ये है बाबा को अपना संसार समझना। हदें सब खत्म हो जाती है, सब मेरे भाई बहने हैं। ये नहीं कि बाकी सब भाई बहने सिवाय एक के, ऐसे भी नहीं है। एक व्यक्ति ने भाषण में कहा माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, तो उसकी जो पत्नी थी वो नाराज हो गई, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, तो वो कहे मैं थोड़ी आपकी बहन हूं। तो फिर बाद में भाषण में चेंज किया, मेरे प्यारे भाइयों बहनों सिवाय एक के। लेकिन हम क्या कहेंगे, बाबा के आगे तो सब बच्चे हैं। कल बाबा ने कहा कि माया मेरी बेटी है, बच्ची है, बड़ी आज्ञाकारी है। बच्चे थोड़ा उल्लंघन कुछ करते हैं तो बाबा कहेंगे जाओ माया, हाँ बेटी जाओ, इसको खूब पछाड़ो। तो माया कैसे पछाड़ती है, तो थोड़ा मनन चल रहा था कल की मुरली से, तो बाबा ने कहा पहले वो क्या करेगी माया, पहले कान पकड़ती है ना, जैसे किसी को तंग करना होता है ना, तो पहले उसका कान पकड़ेंगे, फिर देखते हैं कि कान पकड़ा तो हल्का है, बहुत हल्का से कान पकड़ते हैं, वो कहेगी मेरा ही सुनो, तो कान पकड़ेंगे तो कान खुल जाएंगे तो केवल माया का ही सुनेंगे। फिर उसके बाद थोड़ा और परेशान करने के लिए नाक पकड़ेगी, तो नाक पकड़ के क्या करती है, थोड़ा सा जैसे मुंझाहट होती है ना, नाक पकड़ने से थोड़ा सांस लेने में तकलीफ होगी, तो जैसे कंफ्यूजन पैदा कर देगी नाक पकड़ करके। फिर चोटी पकड़ेगी, उसके बाद तंग करने लिए चोटी पकड़ेगी, तो चोटी पकड़ना माना जैसे अंदर में दिल की धड़कन बढ़ जाएगी, कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा, अंदर से जैसे डर पैदा हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा, स्ट्रेस आएगा। तो स्ट्रेस की परिभाषा हम लोग क्या देते हैं, एक अंदर का दर्द जो अंदर से प्रकट होता है और वो कहता है कि अभी बदल जाओ। लेकिन फिर भी अगर नहीं बदलते हैं तो फिर माया क्या करती है, उसके बाद थप्पड़ मारती है। कल बाबा ने कहा थप्पड़ मारती है, तो थप्पड़ जब किसको मारते हैं तो क्या होता है, मुंह फिर जाता है। तो थप्पड़ मारना माना संग दोष में आ जाते हैं, मुंह फिर जाता है, माया संग दोष में फंसा देती है। फिर संग दोष के फिर देखती है पत्थर भी मारा, अभी तक माया का नहीं बना तो एक पत्थर मारती, कल बाबा ने कहा पत्थर मारती है, तो पत्थर मारती तो थोड़ी चोट लगती है, तो चोट लगती है तो थोड़ा सा और तकलीफ होती है, कष्ट होता है, तो कष्ट भोगते जाते पर माया के वश होते जाते। फिर क्या करती है माया, पेट में घुसा मारती है, है ना, घुसा कल बाबा ने कहा घुसा मारती है पेट में। फिर घुसा जब पेट में मारा माना अन्न दोष में भी आ गए, क्योंकि अन्न दोष संग दोष सारे दोष आ गए। फिर उसके बाद बेहोश हो जाते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं तो माया कच्चा खा जाती है, कल बाबा ने कहा माया कच्चा खा जाती है, तो ये हालत हो जाती है। तो बाबा कहते हैं माया से बचो, क्योंकि माया भी अपना संसार बहुत शक्तिशाली बना के बैठी है। आज बाबा ने कहा कि माया फॉरेनर है, कल बाबा ने कहा माया बेटी है, तो बाबा तो माया बेटी है या फॉरेनर है? फॉरेनर इन द सेंस, यानी कि इस संसार की वो रहने वाली नहीं है, ये संसार तो सतयुग था, ये संसार तो श्रेष्ठ दुनिया थी, भगवान की दुनिया है ये, लेकिन माया ने अपना राज्य बिछा दिया है, बड़ी जाल फैला दी है और हम उसके वश हो गए हैं। अब बाबा कहते बच्चे फिर से मुझे अपना संसार बना लो, जब बाबा को अपना संसार बना लेंगे तब ये सारा संसार फिर से सतयुगी दुनिया बन जाएगा। तो क्या चाहते हैं हम सभी, क्या चाहते हैं, संसार सतयुगी बन जाए या ये कलयुगी ही रहे, क्या चाहते हैं? संसार सतयुग बन जाए। लेकिन फिर बच्चों को फिर बाबा आथत देते हैं, बच्चे थोड़ा धीरज धरो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। कई बच्चे बाबा को कहते हैं बाबा जल्दी विनाश लाओ, तो बाबा कहते हैं बच्चे संपूर्ण कहाँ बने हो, आप संपूर्ण बन जाओ तो नई दुनिया आने में देरी नहीं लगेगी, आप संपूर्ण बन जाओ। और सबसे सहज तरीका यही है संपूर्ण बनने का, बाबा को अपना संसार बनाना, बस उसमें कुछ नहीं करना है। वैसे भक्ति मार्ग में तो हम कहते ही थे ये तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ तेरा है, यानी तेरे में सब कुछ समाया हुआ है, अब प्रैक्टिकल में वो अनुभव करना है। इसलिए तेरा मेरा इस दुनिया का कुछ भी नहीं है, बाकी यहाँ औपचारिक रीति से कुछ पार्टीशन करना पड़ता है, भाई ये इनका हिस्सा ये इनका हिस्सा, वो तो कोई बात नहीं, लेकिन अंदर में तो है ना कि ये सब बाबा का है मेरा नहीं, छोड़ो तो छूटो, एक सेकंड में आत्मा न्यारी बन जाए, प्रभु की प्यारी बन जाए। इसलिए हर वक्त बुद्धि में यही रहे, बस मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई, प्यार चाहिए बस बाबा को मां समझ करके उनकी गोद में चले जाओ, सुख शांति का अधिकार चाहिए नशा चढ़ा लो मैं किसकी संतान हूं, ज्ञान का मनन चिंतन चाहिए बाबा को टीचर रूप में इमर्ज करो बाबा पढ़ा रहा है, सतगुरु रूप से पावन बना रहा है मैं आत्मा उस सतगुरु के संग में कितनी पवित्र हूं। कई समझते मैं इतनी पवित्र तो हूं नहीं, मैं कैसे मानूं मैं पवित्र हूं, इतनी तो मैं हूं नहीं है, कई समझते ना कि मैंने तो जीवन में बहुत पाप किए हैं, बहुत कुछ मैंने भूले किए, मैं इतना तो पवित्र हूं नहीं। पर बाबा कहते अगर मैं ये समझूंगा ये समझूंगी मैं तो इतनी पवित्र नहीं हूं, मैं तो इतनी नहीं हूं, मैं तो ये नहीं हूं, तो कभी बनेंगे ही नहीं। कौन है मेरा साथी, कौन है मेरा सच्चा संसार जो परम पवित्र है, तो क्यों नहीं हूं मैं पवित्र? अगर मैं सोचती भी हूं कि मैं नहीं हूं तो फिर कब बनूंगी? मैं हूं, थी हूं और रहूंगी, अगर ये निश्चय है तो मैं आत्मा तो हूं ही परम, हूं ही पवित्र। दुनिया में कई है, जैसे आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि कई कहते नहीं खाओ पियो ये सब शरीर पर लगता, आत्मा पर तो कुछ नहीं लगता, लेप छेप आत्मा पर नहीं लगता, ये तो उल्टा ज्ञान दे दिया। लगता तो आत्मा पर ही है, क्यों नहीं आत्मा पर लगेगा। लेकिन अंदर में अगर ये भावना है कि मैं वो परम पवित्र शिव बाबा की संतान भी पवित्र आत्मा हूँ, तो पवित्रता की खींच होगी, पवित्रता की अनुभूति होगी। पर ये सोचेंगे मैं तो कभी अपवित्र बनती नहीं, आत्मा तो पर तो लेप-छेप है ही नहीं, इसलिए सब शरीर पर लगता है, गंगा स्नान करो धुल जाएगा, ये तो अज्ञान हो गया, ये तो अपने आप को ही धोखा देना हो गया। लेकिन हाँ, जरूर पाप का बोझा सिर पर है और बाबा की याद से ही ये पाप का बोझा खत्म होगा। और बाबा कहते आगे कोई और पाप मत करो, क्योंकि बाबा के बच्चे बने हैं तो एक का 100 गुना चढ़ जाएगा अगर और पाप किया तो। अज्ञान काल में तो इतना पाप का बोझा नहीं चढ़ता जितना ज्ञान में आने के बाद, अगर पाप किया तो 100 गुना चढ़ जाएगा जो अज्ञान काल में नहीं चढ़ता। जैसे धंधा होता है ना, तो धंधे में हम देखते हैं छोटा मोटा जो धंधा करता है तो फायदा भी थोड़ा नुकसान भी थोड़ा, चलो कुछ नुकसान हुआ घाटा हुआ जरा सा हुआ, 100, 200, 500, 1000, 10000 का बस फायदा हुआ, 2, 500, 1000, 10000 का हुआ। पर जो बड़े व्यापारी होते जिसका करोड़ों का व्यापार होता है, उनका घाटा भी करोड़ों का और उनका फायदा भी करोड़ों का। ये नहीं कि कोई 10-20 हजार का फायदा हो तो गिनती में ही नहीं आता, अगर करोड़ों का व्यापार है तो घाटा भी करोड़ों का होगा, बिल्कुल दिवाला निकल जाएगा, और फायदा होगा तो वो भी करोड़ों का ही होगा। तो उनके कदम में, एक कदम में करोड़ों की प्राप्ति और एक कदम पीछे गया तो करोड़ों का नुकसान। तो हम भी तो बहुत बड़े व्यापारी हैं, लेकिन हम किसके साथ व्यापार कर रहे हैं जो भोलानाथ है। बाबा कहते तुम देते क्या हो और मैं तुमको कितना अपरम अपार देता हूं। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाया तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो, ये एक पैसे की बात नहीं है। बाबा कहते रखो अपने पास, लेकिन मेरा समझ कर चलो, ये सब बाबा का है। और अंतर से उपराम हो जाओ, हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, मैं तो बाबा के पास हूँ, बाबा के पास ही जा रहा हूँ, ये सब बंधन समाप्त करके मुझे वापस जाना है। सब कुछ करते हुए भी, जैसे बाबा ने कहा कि सब कुछ करते भी अपने आप को छिपाया, वैसे हम बच्चे भी ऐसे अनुभव करें, कोई प्रकार की संसार की इच्छाएं न हो, तब हम संपन्न बनके, संपूर्ण बनके बाबा के साथ वतन में उड़ेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।